सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं हंसचामूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। So what will you do? Should I continue the class or your doubt clearing session? You have up the class, okay. See, the chapter 4 starts, चौथा अध्याय जो है भगवान का कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न से शुरू नहीं हो रहा है, भगवान अपने बारे में बताना चाहते हैं। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, अर्जुन के मन में एक बार आया होगा विचार, पता नहीं ये कर्मयोग मेरे को करने को कहते हैं, ये पहले कभी किसी ने किया कि नहीं किया। भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में है, तो भगवान को समझ में आ गया इसकी क्या सोच रहा है ये। भगवान कहते हैं मैंने ये ज्ञान, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना ज्ञान है, मैंने सूर्य को दिया, उसके बाद में गुरु शिष्य परंपरा चलती रही, मगर बीच में जाके कहीं खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, वो कारण बगैर हम लोगों ने देखे हैं। फिर जो है एक प्रश्न अर्जुन ने किया भगवान को, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये हमारा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि बहुत लोग जो है सोचते होंगे कि भगवान की उम्र 70 साल, कैसे उन्होंने सूर्य को ज्ञान दिया। तब भगवान कहते हैं मेरे बहुत जन्म हुए हैं अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं, मगर एक चीज है, मैं अपने सब जन्म को जानता हूं और दूसरे के जन्म को भी जानता हूं, सब प्राणियों के जन्म को जानता हूं, मगर तुम जो है नहीं जानते हो, बहुत जन्म हमारे हुए हैं और तुम्हारे भी बहुत हुए हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अजोपि, मेरा जन्म तो कभी होता नहीं है, फिर भी हम प्रकट होते हैं। अच्छा, कब होते हैं आप प्रकट? तो भगवान कहते हैं, ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, यदा यदा मतलब जब भी दरकार होगी, जब भी दरकार होगी, आज दरकार है तो आज भी आ जाएंगे, कल दरकार होगी तो कल भी आ जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स पीरियड, कोई टाइम नहीं है, यदा यदा ही। क्यों आते हैं आप? तो भगवान कहते हैं धर्मस्य ग्लानिर भवति भारत है, जब धर्म के अंदर हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म जब गिरता है तो हम आते हैं। और क्या करते हैं? अभ्युत्थाना अधर्मस्य, जब धर्म गिरता है तो अधर्म बढ़ता है। तो भगवान ने इस श्लोक के अंदर दो चीज बताई, क्यों आते हैं, कब आते हैं। टाइम भी बता दिया, जब दरकार होगी तब आएंगे, और दूसरा यह भी बताया कि हम क्यों आते हैं, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में उन्नति या बढ़ोतरी होती है तब हम आते हैं। अब यहां प्रश्न होता है धर्म का माने क्या है। देखो, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, लोग मिस कर रहे हैं, क्या करें। धर्म के माने क्या हैं? तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे कि धर्म के माने वो है कि जिससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड हो, माइंड एंड इंटेलेक्ट इंटीग्रेटेड हो, मन बुद्धि यूनाइट हो, एक हो, उनमें डिवीजन ना हो, उसको धर्म कहते हैं। हम यहां हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मुसलमान धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ईसाई धर्म की बात नहीं करते हैं। लोग यही सोचते हैं कि धर्म का मतलब जो है हिंदू धर्म नीचे गया, अब उसको फिर हिंदू धर्म को उठाना, ऐसा नहीं है। धर्म का माने है कि धारणात इति धर्म, धारणात मतलब जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। अच्छा, इट इज नॉट ए रिचुअल, यह कोई कर्मकांड नहीं है कि हमने कोई कर्म किया तो यह धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। कोई पूजा जप तप ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखो, तो प्रकृति में सब कोई अपने अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं, पूरी प्रकृति के अंदर सब कोई अपने पालन करते हैं अपना धर्म को। अगर कोई पालन ना करे अपना धर्म तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर सूरज अपना धर्म पालन ना करे, धरती में अपना धर्म ना पालन करे तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, गड़बड़ी लग जाएगी। गुरुदेव कहते हैं धर्म क्या है, इट इज ए लॉ ऑफ बीइंग, गुरुदेव कहते हैं। अच्छा, केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने धर्म का पालन नहीं करता है, बाकी उसको छोड़कर बाकी सब धर्म का पालन करते हैं। जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, सब अपना धर्म का पालन करते हैं, केवल एक मनुष्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसको फ्रीडम ऑफ एक्शन मिला हुआ है, इसलिए नहीं करता है वो। तो इंटीग्रेशन दो लेवल पर होता है, एक तो व्यक्तिगत लेवल पर होगा, दूसरा समाज के लेवल पर होगा। दो लेवल पर होगा। जब दोनों का इंटीग्रेशन होगा तब वो नेशन, वो राष्ट्र, वो समाज जो है बढ़ता है, फलता है, फूलता है। तो सारे फैक्टर जो व्यक्तित्व एवं समाज को जोड़ कर रखते हैं वो धर्म है। जो भी फैक्टर जोड़ के रखे उसको हम धर्म कहेंगे। गुरुदेव ने गीता में शुरू में ही कहा कि माइंड और इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि को इंटीग्रेट करना है। हमारी मन और बुद्धि इंटीग्रेटेड नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। कई बार ऐसा देखा कि आप बुद्धि कहती है ऐसा नहीं करो, मन कहता है कर दो, हम कर देते हैं और बाद में स्ट्रेस हो जाता है। तो इंटीग्रेशन चाहिए। तो एक तो परिभाषा हुई धारणात धर्म, जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। और ये धर्म व्यक्तिगत लेवल पर और समाज के लेवल पर, दोनों लेवल पर इंटीग्रेशन होगा, यूनियन होगा। गीता के प्रारंभ में कहा गया है द्विदो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षण च। गीता जब हमने शुरू की थी तब भी आपको बताया था कि दो किस्म के लक्षण धर्म यहां बताए गए हैं वैदिक धर्म में। क्या है? एक तो प्रवृत्ति लक्षण है, दूसरा निवृत्ति लक्षण है। प्रवृत्ति लक्षण किसको कहते हैं, निवृत्ति लक्षण किसको कहते हैं, आप लोग को याद है? प्रवृत्ति लक्षण, प्रवृत्ति धर्म क्या है, निवृत्ति धर्म क्या है?
प्रवृत्ति इज कर्मयोग, निवृत्ति इज मनन
श्रवण मनन निधि ध्यान। क्यों भगवान ने प्रवृत्ति को करने को कहा? देखो, साइंस समझ लो तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कहा भगवान। क्यों कहते हैं कि प्रवृत्ति योग करना है आपको, प्रवृत्ति आपको धर्म करना है? पहले हर जीव जो है वो रजस तमस प्रधान है और ईश्वर जो है वो सत्य प्रधान है। तो रजस का गुण का क्या मतलब होता है? उसमें एक्टिविटी आ जाती है, पैशन है उसमें। आप बिना एक्शन के एक मिनट नहीं रह सकते, भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। आप बिना कर्म के एक सेकंड नहीं रह सकते, एक्शन आपको करना ही है। ठीक है, हम कर्म के द्वारा बंधते हैं और कर्म के द्वारा हम बंधन मुक्त होते हैं। कैसे हम बनते हैं, कैसे बंधन मुक्त होते हैं बताएंगे आप? हाँ, तो ठीक है, मगर होता कैसे है वो? देखो, हर व्यक्ति कर्म जो है सुख के लिए करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुख के लिए कर्म करता है? नहीं करता है। तो कर्म हम सुख के लिए करते हैं। किसके सुख के लिए करते हैं?
अपने
सुख, अपने सुख के लिए करते हैं। ये कर्म जो है हमको बांधता है। जब हम कर्म अपने सुख के लिए करते हैं तो वो कर्म बांधता है। कैसे बांधता है? जैसे ही कर्म हमने किया तो कर्म एक फल आ गया, उसका फल आएगा, फल आने से ही हम उसको लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे। ऐसे ही तो होता है। जब लाइक करेंगे तो हम उस चीज को बार बार करेंगे। हमने कई बार आपको एग्जाम्पल दिया, या तो पिज्जा ले लो, 10 जगह पिज्जा मिलता है, मगर आप एक दुकान में क्यों बार बार जाते हो? क्योंकि हर व्यक्ति का पिज्जा दूसरा दूसरा है। हमारे इंडिया में कलकत्ते में हर दुकान का समोसे का टेस्ट दूसरा है, अलग अलग है, सबका अपनी रेसिपी अलग अलग है। अब आपको एक दुकान का पसंद है, आपने 20 दुकान खा लिया, खाने के बाद में आप देखो कि बस केवल आप उसी दुकान में बार बार जाते हो, दूसरी दुकान में नहीं जाते। लाइक्स डिसलाइक्स, जहां लाइक्स डिसलाइक्स आ गई आप बंधन में पड़ गए। अब वही कर्म आपको छुड़ाएगा अगर वो कर्म आप किसकी खुशी के लिए, तब आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। इतना ही करना है तब बंधन मुक्त हो जाओगे। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं कि आप अपने कर्म भगवान की खुशी के लिए करो, तब आपकी वासना का क्षय होगा। जब वासना का क्षय होगा तब आपका मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तब आपके मन में विचार आएगा कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या सारी जिंदगी कमाते रहो खाते रहो, 16 घंटे खटते रहे केवल 2 रोटी के लिए? ये विचार आएंगे आपके मन के अंदर, रहो मेरा पर्पज क्या है इस दुनिया में आने का, तब आप जो है निवृत्ति मार्ग की तरफ में जाओगे। तब श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधि ध्यान करोगे, मुक्त हो जाओगे। अब आपको समझ में आया क्यों भगवान कहते हैं पहले प्रवृत्ति मार्ग करना होगा, उपाय नहीं है कुछ, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय है? बोले नहीं है। न अन्य पंथा विद्यते, और कोई पथ नहीं है। तो पहले विवृत्ति मार्ग, ये देखो दो धर्म बताएं, वैदिक धर्म बताएं, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, अगर आपको मुक्त होना है। अगर मुक्त नहीं होना है तब क्या करना है? कर्म योग नहीं करना है, तब आपको केवल कर्म करना है, ताकि आप अपना जो है ब्लूप्रिंट बना के फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते रहो। तो हम देखते हैं कि जब हम कोई वैल्यू वर्चूज या क्वालिटीज को जब फॉलो करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व बनता है, पर्सनैलिटी बनती है। देखो ये धर्म है, वैल्यू वर्चूज क्वालिटी। 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक के अंदर भगवान 26 गुणों की बात करते हैं, और 16वें अध्याय के 4वें श्लोक के अंदर भगवान जो है आसुरी, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, आसुरी संपत्ति के अंदर केवल 6 चीजों का नाम लिया, और दैवी संपत्ति में कहा 26 गुण। एक गुण भी आप अगर अपना लेंगे तो दूसरे गुण अपने आप आते शुरू करेंगे, और इन गुणों से क्या होगा, आपका व्यक्तित्व बनेगा। और ये गुण अगर समाज में सबको ही फॉलो करें, अब बताओ अगर मैं ईमानदार हूं और समाज में सब व्यक्ति ईमानदार हो जाएं, तो राम राज्य होगा कि नहीं होगा? तो समाज भी संगठित हो गया, मेरा व्यक्तित्व भी, मेरा भी मन और बुद्धि जो है वो भी संगठित हो गए, दोनों ही हो गए। तो गुरु जी कहते हैं जिसे देखकर हम दूसरों का आदर करते हैं और जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं वो धर्म है। जिसको हम दूसरों में देख के, गुण देख के उनको रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, और जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं वही धर्म है। मनुस्मृति में कहा गया श्रुयंताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। श्रुयंताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के बारे में सुनो, जानो। जानने के बाद में क्या कहते हैं, श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुनने के बाद में फिर यू उसको एक्सेप्ट करो, उसके जीवन में उतारो, उसमें स्थित हो जाओ। क्या क्या वैल्यूज हैं, देखो ये वैल्यूज आपको सब जगह मिलेगी। आप बाइबल में जाओ, इस्लाम में जाओ, या आप गीता में जाओ, उपनिषद में जाओ, आप भागवत में जाओ, रामायण में जाओ, सब जगह गुण बताए जाएंगे कि आदमी को ये गुण धारण करने चाहिए। जब आप गुण धारण करोगे तभी आपके व्यक्तित्व में चमक आएगी। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते वो दूसरों के साथ ऐसा नहीं करो। जिस चीज को आप खुद समझते हो कि गलत काम है उसको जो है आप दूसरों के ऊपर मत थोपो। हम समझते हैं गलत है, हम ये नहीं चाहेंगे कि दूसरे भी ऐसा करें। अब देखो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। हम दूसरे व्यक्ति का आदर कब करते हैं, जब वो विनम्र बोल है, मधुर बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, वो हिंसा नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम उसका आदर करते हैं, उसको हम पसंद करते हैं। नहीं करते ऐसा, अगर कोई झूठ बोलता हो हमें अच्छा लगेगा नहीं, कोई हिंसा करता हो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उससे बात नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति का हम आदर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें अच्छे गुण हैं उसको हम पसंद करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं उसको हम पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ में हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं लोग हमें प्यार करें, हमसे घृणा ना करें, हमें सहायता करें, ऐसा हम चाहते हैं ना, हमसे झूठ ना बोले, हमसे कोई चीटिंग ना करे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे हमसे ना करें। और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दें हमें, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, हमसे गलती हो सकती है क्षमा करें। हम चाहेंगे कि जो है दूसरे सत्य बोले, क्योंकि अगर मैं सच बोलता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा दूसरे भी हमसे सच बोलें, मेरी सहायता करें, हमें किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाएं, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। देखो ये सब गुण है। तो मनु ने कहा दशकम धर्म लक्षणम, मनु ने कहा है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। धृति, क्षमा, दमो आस्तेयम। धृति, क्षमा, दमो आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। धृति, क्षमा, दमो आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, मनुस्मृति। धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, मनुस्मृति के हिसाब से धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, फोर्टिट्यूड, क्षमा, फॉरगिवनेस, दम, कंट्रोल, शौचम, प्योरिटी, आस्तेयम, नॉन स्टीलिंग, इंद्रिय निग्रह, डिजायर कंट्रोल, धी, विस्डम, विद्या, नॉलेज, सत्यम, ट्रुथ, अक्रोध, नॉट गेटिंग एंग्री एवरी मोमेंट, अक्रोध। देखो ये सारे के सारे वैल्यू हो गए कि नहीं। दी विस्डम, तो मनु कहते हैं कि 10 जो है इसके लक्षण कहते हैं, इनको हम सामान्य धर्म कहते हैं। जैसे कोई इंजीनियर, डॉक्टर, पियोन, ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि हैं, मगर ये इन चीजों का, इन धर्मों का अगर पालन करें तो उनके व्यक्तित्व में इंटीग्रेशन होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, पर्सनैलिटी और अच्छी होगी। और अगर समाज में सब कोई इसका पालन करें तो समाज भी अच्छा होगा, समाज भी इंटीग्रेटेड होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक डॉक्टर है, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर उसकी वाणी मधुर नहीं है। डॉक्टर है मगर बहुत अच्छा है, मगर वाणी वाणी मधुर नहीं है। उसको एलोपैथी आती है मगर सिंपैथी नहीं आती है। तो ऐसे डॉक्टर के पास लोग जाते हैं जिसकी मधुर वाणी नहीं हो। देखो, डॉक्टर के पास तो वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए। डॉक्टर के पास में जब जाता है आदमी, अगर वो एक शब्द कह देता है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका आधा रोग खत्म हो गया, आधा रोग खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद आपकी इतनी श्रद्धा होती है कि अगर वो डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भी देता है तब भी आप कहते बहुत आराम हो गया। हमने रियली देखा है। हमारी मदर के पेट में दर्द हुआ एक बार, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, वो चिंता नहीं करो, उन्होंने मेरे को सुई दे दो। अब डॉक्टर समझ गया कि क्या बात है, डिस्टिल वाटर इंजेक्शन दिया, देने के साथ साथ ओह व्हाट ठीक हो गई, ओह हो जाता है। अब कोई एक ऑफिसर हो और विनम्र ना हो तो आप उसके पास जाना चाहेंगे? नहीं जाएंगे। आप रेस्पेक्ट करते हो उस आदमी को कि यहाँ ऑफिसर है, मगर वाणी कठोर है, अच्छा नहीं बोलता है, तो आप उसके पास नहीं जाओगे। तो वैल्यू और वर्चू आर धर्म, इस पे हारमोनी होती है। अगर हम वैल्यू या वर्चू को ना माने, समाज में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू और वर्चू का उल्टा अधर्म है, वहां प्यार नहीं है, वहां डिवीजन है। जहां वैल्यूज और वर्चूज को आप नहीं मानते वो अधर्म हो गया। तो धर्म क्या हुआ? वैल्यू एंड वर्चू को पालन करना ये धर्म है, दैवी गुण को अपनाना ये धर्म है, दैवी गुण को न अपनाना अधर्म है। हमने पहले ही कहा हम अपने हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहां धर्म का स्पेसिफिक मीनिंग है, अगर आप इस मीनिंग को नहीं पकड़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, मंथरा ने राम परिवार में डिवीजन करना चाहती थी, भरत को राज्य मिले और राम को वनवास, मगर राम जी ने होना नहीं दिया, डिसइंटीग्रेशन नहीं होने दिया, क्योंकि वो धर्म को पकड़ के रखे थे, वैल्यूज को पकड़ के रखे थे। हालांकि कैकेयी चाहती थी कि डिवीजन हो जाए उसके अंदर, मगर ऐसा नहीं हुआ। कई बार हम देखते हैं समाज के अंदर हमारे बहुत लंगोटिया यार होते हैं। जब लंगोटिया यार थे तब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग उनके साथ में ठीक एक बनती थी, मगर कहीं पर ऐसा गलती हो गई, कहीं गड़बड़ी आ गई, कहीं वैल्यू के अंदर इतना गड़बड़ हो गया कि वो आदमी अब हमारा दुश्मन हो गया। अब हम उसको ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि अब उसके अंदर वैल्यू के अंदर चेंज आ गया। जब तक वैल्यूज एक रहेंगी तब तक हम मित्र हैं, जैसे ही वैल्यू का गड़बड़ हुआ छूट गया। उसी तरह पति पत्नी के अंदर भी जब तक ट्रस्ट है तब तक बना रहता है। जहां मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट आया संबंध बिगड़ा। ट्रस्ट का मतलब गुण जब तक हैं, जहां गुण का ह्रास हुआ वहां पर डिवीजन आ जाएगा। एक बिजनेस के अंदर दो पार्टनर थे, तो एक पार्टनर को जो है पॉइजन के कारण मर रहा था, किसी तरह से उसको पॉइजन हो गया, वो मर रहा था। तो मरने के पहले वो अपने दूसरे पार्टनर को डिक्लेयर करना चाहता था कि मैं मर रहा हूं, मगर मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं। क्या? कि मैंने तुमको जो है $1,000,000 तुम्हारे चुराए हैं, तुमको मिलने चाहिए थे, मगर मैंने जो है खाता में बही में चोरी करके वो हमने ले लिए हैं। दूसरा पार्टनर कहता है मेरे को मालूम था, मैंने ही तुमको 20 दिया है, मैं भी कन्फेस करना चाहता हूं कि 20 तुमको किसने दिया, मैंने ही दिया है। एक बार दो पार्टनर बैठ के मीटिंग कर रहे थे, दो ही पार्टनर थे मीटिंग कर रहे थे, तो पहला पार्टनर बोलता है कि मैं जाता हूं जरा अलमारी खुली है बंद करके आऊं। तो बोले क्या दरकार, मैं तो यहां बैठा हूं। पर डरने क्या बात है, मैं तो यहां बैठा हूं। तो पहली डिफिनेशन हुई हमारी धर्म की, धारणा धर्म, जिसको धारण किया जाए, गुणों को हम धारण करते हैं, वो हुआ पहला। दूसरा जो है प्रवृत्ति निवृत्ति वैदिक धर्म है, ये दूसरी डिफिनीशन हुई। तीसरी डिफिनीशन है अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, ये तीसरी डिफिनीशन हुई धर्म की। हिंसा माने क्या, हिंसा माने द्वेष होगा, तो अहिंसा माने क्या हुआ, प्रेम होगा। अगर समाज में हिंसा होती है तो हम क्या करते हैं, हमको तो द्वेष हो जाता है, उन लोगों से हम नहीं बात करना चाहते हैं। अगर अहिंसा कोई फॉलो करे तो उससे हमारा प्रेम होगा, सेंस ऑफ वननेस होगा, केयरिंग शेयरिंग होगा, अदरवाइज दरार पड़ जाएगी। देखो तो बुद्धि धर्म का पालन करना चाहती है मगर नहीं करना चाहता है, मन नहीं करना चाहता है, तब क्या होता है, तब तनाव हो जाता है हमारे में। ये है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मन और बुद्धि। बुद्धि करना चाहती है, मन नहीं करना चाहता, या बुद्धि कहती है मत करो, मन कहता है करो, तब आपके अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। तो धर्म और अधर्म पहले मन में आते हैं और उसके बाद में फिर वो शारीरिक लेवल पर आ जाते हैं। तो अधर्म से झगड़ा होगा, धर्म से प्यार होगा। महाभारत का युद्ध अधर्म के कारण हुआ, झगड़ा होता है। अच्छा, धर्म के पालन से और एक चीज होती है, वो ये होता है कि अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय मतलब यहां पर भी आपको मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, निश्रेयस यहां से जाने के बाद भी आपको लाभ मिलेगा अगर धर्म का पालन करोगे। धर्म का पालन मतलब आपके चरित्र में गुण अगर आ जाएं तो इससे क्या होगा, यहां पर भी आपको सुविधा होगी, रहते रहते भी आपको सुविधा मिलेगी, मेटीरियल वेल्थ मिलेगा, और निश्रेयस बाद में भी मुक्ति के अंदर भी अच्छा होगा, आपका मोक्ष होगा। कैसे होता है, क्या साइंस है इसके पीछे? अगर हम धर्म का पालन करें, मान लो एक आदमी ईमानदार है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में टाटा है, ईमानदारी से काम करते हैं, 100% ईमानदारी नहीं भी हो सकती है, मगर मेजॉरिटी पोर्शन उनकी ईमानदारी है, तभी तो उनकी कंपनी 100 साल से ज्यादा है यहां पर, लोग बढ़ रहे हैं ना, यहां अभ्युदय है। आज हमने अखबार में पढ़ा कि हमारे इंडिया में जेट एयरवेज जो है बहुत बुरा हाल है, टाटा लेना चाहता है। ईमानदारी कारण देखो प्रॉस्पर्टी कैसे बढ़ती जा रही है। हम करेंगे तो हमारा भी यही होगा। अच्छा, निश्रेयस कैसे होगा, अगले जन्म में कैसे लाभ मिलेगा? अगर आप वैल्यूज का पालन करते हो तो आपका मन शुद्ध रहेगा, मन शांत रहेगा, और यही मन शुद्ध शांत मन आपको मालूम है सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में जाता है। तो देखो आपको निश्रेयस हुआ कि नहीं, उस जन्म में भी फायदा मिलेगा। चौथी डिफिनीशन है धर्म की ड्यूटी, कर्तव्य कर्म, अपनी ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य कर्म करो। कर्तव्य कर्म क्या है, अपना स्वधर्म करो, स्वधर्म क्या है? अपनी वासना के अनुसार अपना कर्म करो। कैसे करो? कर्मयोग की तरह करो, ताकि वासना का क्षय हो। मगर हम परधर्म करना चाहते हैं, स्वधर्म नहीं करना चाहते, परधर्म करना चाहते हैं। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, मगर वो जाके भागकर भगवान कृष्ण को कहता है कि मैं भीख मांगूंगा, मैं ब्राह्मण वृत्ति करूंगा, स्वधर्म क्षत्रिय धर्म छोड़ के ब्राह्मण धर्म को लेना परधर्म है। स्वधर्म में निधर्म श्रेय, परधर्म भयावह। अपने धर्म का पालन करते करते वो बोलते हैं वो अच्छा है, श्रेय है। आप कर्मयोग करते करते अगर वासना का क्षय हो गया तो आपका तो बढ़िया है, आपका कैपिटल वासना की कमती हो गई। अगर आप परधर्म करोगे तो आपकी वासना की कैपिटल बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए कहा गया कि स्वधर्म का पालन करो। अच्छा, अगर हम वैल्यूज वर्चूज का पालन ना करें, वैल्यू वर्चूज का पालन ना करें, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग का पालन ना करें, हम अहिंसा के बदले हिंसा करें, हम चार डिफिनेशन को एक साथ पकड़ रहे हैं, और अपना कर्तव्य कर्म ना करें, वैल्यू वर्चूज को एक्सेप्ट ना करें, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग जो भगवान ने कहा है उसका भी पालन ना करें, अहिंसा के बदले अहिंसा परमो धर्म हमने कहा, अहिंसा ना करके हम हिंसा करने लगे हैं, और चौथा अपना कर्तव्य कर्म ना करके स्वधर्म ना करें करके परधर्म करें, तो क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा। चारों का हमने उल्टा कर दिया। धर्म क्या है? धर्म यह है कि वैल्यू वर्चूज को पालन करना धर्म है, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को पालन करना धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, अपने कर्तव्य कर करना धर्म है, और इसका अगर उल्टा करें तो अधर्म हो जाएगा। वो अब लोग वैल्यू को फॉलो नहीं करते हैं और अधर्म की परिभाषा बदल देते हैं। घूस लेना पाप है। अब वो कहते हैं भाई हम आते हैं ऑफिस में तो उसके लिए हमको वेतन मिलता है आने का, और अगर काम करेंगे तो आपको सेवा शुल्क देना है। अब उसका घूस का नाम हो गया सेवा शुल्क। अधर्म है ये, मगर नाम बदल दिया, आप सेवा शुल्क दे रहे हो। भाई लगता है बहुत अच्छी चीज है सेवा शुल्क है। तो ब्रह्मचारी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ जब वेदांत कोर्स में बच्चे जाते हैं तो चार बजे उठने की आदत बहुत कम लोगों की होती है, और वहाँ पर तो घंटी बज जाती है। घंटी बजने के बाद में फिर वो बच्चे सोचते हैं थोड़ा सा और सो लें, अभी उठ जाएंगे 15 मिनट में, जब देखते अरे 45 मिनट निकल गया, अब दौड़ना है मंदिर में, वहां तो वैदिक चैंटिंग है। बिना नहाए धोए मुंह ब्रश किए एक ही होके वहां पहुंच जाते हैं, देख के पता लगता है बिना नहाया है। उसके लिए वो अधर्म है, उसके लिए वो अधर्म है। तो जब भी बढ़ता है अधर्म, भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्रीजामी हम भगवान प्रकट होते हैं, अवतरण होता है उनका, अवतरति ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या है? सगुण निराकार थे, अब सगुण साकार हो गए, यही उनका अवतरण है। हायर लेवल से लोअर लेवल में आना, उसको हम लोग अवतार कहते हैं, कि वो प्रकट होते हैं। तो भगवान जब अधर्म होता है तो वो दो स्टेप में काम करते हैं हरदम। पहले समझाते बुझाते हैं, और दूसरा स्टेप है जब नहीं समझता है बुझता है तब छुट्टी। शरीर से हटा दो, उसका शरीर का नाश कर देते हैं। देखो अवतार कैसा होता है, अब गाड़ी आप चला रहे हो, हाँ गाड़ी चला रहे हो, हटा तो आपकी गाड़ी कहीं खराब हो गई और आपको मालूम है क्या गड़बड़ हुआ है। आप उतरे, उतर के बाद गाड़ी का बोनेट खोला, आपको समझ में पता लग गया था क्या करना है, उसको आपने टुक टक किया, फिर आप आके गाड़ी में बैठे, स्टार्ट किया, चले गए। तो ये गाड़ी जो गड़बड़ हुई है, ड्राइवर उतरा वो अवतार है। गाड़ी का ड्राइवर था वो, तो ड्राइव कर रहा था, हटा तो उसको गाड़ी बंद हो गई, तब उसको अवतरण करना पड़ा, उतरा, उतर के उसने गाड़ी को रिपेयर किया, अवतार का काम खत्म हुआ, फिर गाड़ी में बैठा, ड्राइवर बना, चला गया। भगवान भी ठीक यही काम करते हैं, एक पर्पज के लिए आएंगे, पर्पज खत्म हुआ फिर अपना वो निकल जाएंगे। देखो सृजामी वर्ड आया यहां पर, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजाम्यहम सृजामी अहम। सृजामी सृज धातु से होता है, सृज का मतलब होता है टू प्रोजेक्ट, टू प्रोजेक्ट। सृष्टि क्या है, सृष्टि भी सृज धातु से आती है, इट इज ए प्रोजेक्शन, इट्स नॉट रियली देयर। तो भगवान जब कहते हैं सृजामी, तो वो भी रियल नहीं है, वो भी केवल एक प्रोजेक्शन है भगवान का। सृजामी, अच्छा अब हम देखेंगे कि ये जो है अधर्म जो है तीन स्तर पर आता है, बुद्धि पर, मन पर और शरीर पर। बुद्धि के स्तर पर क्या है, बुद्धि के स्तर पर अधर्म यह है जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। जब शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तब क्या होता है, तब बुद्धि में अधर्म आता है। बुद्धि में अधर्म क्या आता है, अच्छे विचार नहीं आएंगे, अच्छी आइडिया नहीं आएंगी। शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि अच्छी चीज क्या होती है। तो बुद्धि के स्तर पर अधर्म क्या है, शास्त्र का नहीं पढ़ना, अच्छे विचार नहीं आना, अच्छे आइडियाज नहीं आना, ये बुद्धि के स्तर पर अधर्म है। मन के स्तर पर अधर्म क्या है, जब तक आप एकत्व नहीं देखोगे तब तक प्रेम नहीं होगा। सब जगह आपको एकत्व देखना है, हर जीव के अंदर वो एक ही भगवान है। जब तक एकत्व नहीं देखोगे तब तक आपके अंदर कोई सहानुभूति, कोई करुणा नहीं होगी। अगर सहानुभूति करुणा नहीं होगी तो क्या होगा, आप कठोर और क्रूरल हो जाओगे, हिंसक हो जाओगे, मन कठोर हो जाएगा। जब एकत्व देखोगे तब मन के अंदर प्रेम होगा, और एकत्व नहीं देखोगे तो प्रेम के बदले आपका मन कठोर हो जाएगा, क्रूरल हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाता है। शरीर पर क्या है, शरीर के लेवल के ऊपर आप अपना कर्तव्य कर्म करते हो तब तो धर्म है, अगर अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते हो तो अधर्म हो गया, आप निषिद्ध कर्म कर बैठोगे, कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो आप निषिद्ध कर्म कर बैठोगे। और ऐसा व्यक्ति जो है ना गिल्टी भी नहीं फील करता है, गलती हो गई मगर गिल्टी फील नहीं करता है। तो जब अधर्म बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के ऊपर में रूल करना शुरू कर देता है तब भगवान आते हैं, तब भगवान आते हैं। देखो अवतार के तीन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है जब पूरा धर्म का पालन होता है तब अवतरण नहीं होता है, कोई दरकार नहीं है। जब पूरा धर्म का पालन होता है तब अवतार की कोई आवश्यकता, जब पूरा अधर्म होता है तब भी अवतार की आवश्यकता नहीं होती है। देखो जब पूरा धर्म का पालन होता है तब भी अवतार की दरकार नहीं है, सब कोई धर्म पालन कर रहे हैं, राम राज्य है। और जब पूरा अधर्म होता है तब भी अवतार की दरकार नहीं होती है, क्योंकि वो आपस में ही लड़के मर जाएंगे, भगवान की दरकार नहीं है। यदुवंश में ऐसा हुआ, यदुवंश भगवान कृष्ण का वंश, वो सब आपस में लड़के मर गए, एक भी नहीं बचा। तो जब अधर्म बहुत ज्यादा होता है तब आपस में लड़ेंगे सब, लड़के खत्म हो जाएंगे। और जब अधर्म बहुत है, धर्म कम है, प्रपोर्शन जब है 100% अधर्म, भगवान की दरकार नहीं है, 100% धर्म है तब भी भगवान की दरकार नहीं है। मगर अगर अधर्म ज्यादा है 80%, धर्म 20% है, भगवान आएंगे टू सेट इट राइट। अगले श्लोक में जाके भगवान कहेंगे कि परित्राणाय साधु नाम, इसका मतलब कुछ साधु हैं जो धर्म पालन करते हैं। तो भूतकाल में भी भगवान का अवतार अनेक बार हुआ है। भगवान जब कहते हैं कि हमने बहुत बार अवतार लिया है तो बहुत बार हुआ है, रावण को मारने के लिए, कंस को, महिषासुर को, हिरणाक्ष को, हिरण्यकश्यप को, इन सबको मारने के लिए तो अवतार, डिफरेंट डिफरेंट अवतार के रूप में आए हैं भगवान। इब आने की प्रार्थना कौन करता है? साधु लोग करते हैं। जो साधु लोग हैं वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आप आइए। फिर देवता लोग जाते हैं विष्णु के पास में कि आपका पालन, सस्टेनेंस डिपार्टमेंट आपका है, आप कुछ कीजिए। फिर भगवान जो है अवतरण करते हैं। अच्छा, कुछ लोग निर्गुण पंथी हैं, मूर्ति एवं चित्र भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि इनफाइट निर्गुण सगुण कैसे होगा? दे डोंट बिलीव। निर्गुण पंथी उसको कहते हैं, वो एक ही रूप जानते हैं भगवान का। भगवान निर्गुण है और निर्गुण सगुण कैसे, लिमिटेड कैसे होगा? निर्गुण निराकार जो इनफाइनाइट है वो फाइनाइट कैसे होगा? वो तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। दूसरे लोग हैं आर्य समाजी, यज्ञ याग करते हैं, ईश्वर मानते हैं मगर अवतार नहीं मानते हैं। आर्य समाजी लोग अवतार नहीं मानेंगे, भगवान है ईश्वर है मानेंगे, याग यज्ञ करेंगे। एक तीसरे किस्म के लोग हैं, वो ब्रह्म को मानते हैं, वो ब्रह्म समाजी हैं। देखो इनसे एकदम डिफरेंट है। वो नाम सुना है कभी ब्रह्म समाजी? ब्रह्म समाज भी एक होता है, ब्रह्म समाजी हैं, आर्य समाजी हैं, निर्गुण पंथी हैं। मगर वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि भगवान निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। आप ऐसा क्यों कहते हो भाई? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान हमारे सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ कर सकते हैं वो, उनकी मर्जी है। अगर हम कहें केवल भगवान निर्गुण हैं, सगुण नहीं हो सकते, हमने उनको लिमिटेड कर दिया। अगर हम कहें कि केवल भगवान सगुण है निर्गुण नहीं है, फिर भी लिमिटेड कर दिया। मगर भगवान निर्गुण है, सगुण भी हो सकते हैं, अवतार भी हो सकते हैं, तो ये उनकी कैपेसिटी है, उनकी शक्ति है, वो कर सकते हैं अपने आप को ऐसा। तो हमारा वेदांत ऐसा कहता है। देखो अवतार का बीज हमको केनोपनिषद में मिलता है। गीता के पहले उपनिषद आए हैं, केनो उपनिषद के अंदर में ब्रह्म एक यक्ष का रूप लेके आता है। ब्रह्म निर्गुण निराकार है मगर उसने एक यक्ष का रूप ले लिया, और उस यक्ष को पहचानने वाले के लिए जो है पहले वायु को भेजा गया, अग्नि को भेजा गया, और बोलते हमको समझ में नहीं आया कौन है ये। फिर इंद्र खुद गए, तो जैसे ही इंद्र पहुंचे यक्ष चला गया, उसकी जगह वहां पर एक उमा आ गई। उमा से इंद्र ने पूछा भाई कौन थे? बोले यही ब्राह्मण थे। तो अवतार वहां, ब्राह्मण ने एक रूप ले लिया, यक्ष का रूप ले लिया। देखो अवतार वहां से केनोपनिषद से शुरू होता है। भगवान कहते हैं एक बार क्या, मैंने बहुत बार जन्म लिया, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी चवार्जुन। अच्छा कितने किस्म के अवतार होते हैं? कितने किस्म के अवतार होते हैं। एक तो होता है पूर्ण अवतार, कंप्लीट अवतार, जन्म से लेके कि मृत्यु बोलो या वो अपने आप को छिपा लेते हैं। जब पूरी लीला होती है उसको हम पूर्ण अवतार कहते हैं, और भगवान अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आते हैं, पूरे सामर्थ्य के साथ में आते हैं, जैसे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है। तो राम अवतार के अंदर राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए उसमें 12 कलाएं हैं, सूर्य के 12 नाम हैं, 12 महीनों के 12 नाम हैं, इसलिए उसको 12 कला कहते हैं। चंद्रमा में 16 कला है, इसलिए भगवान कृष्ण को 16 कला वाला कहते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि तब कृष्ण जो है 16 कला है, इसमें 12 कला है, तो वो जो है उनके पास में ज़्यादा बेटर है ये। नहीं, ऐसा नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, एक बराबर हैं। सूर्यवंशी के अंदर सूर्य के अंदर 12 कलाएं हैं, चंद्रवंशी के अंदर चंद्र के अंदर 16 कलाएं हैं, दोनों एक ही हैं। अच्छा, तो इनमें क्या होती है, सारे मानव जीवन की घटना होती है। एक होता है अंश अवतार, एक पार्शियल काम करने के लिए, काम किया चले गए, जैसे वेद व्यास, वेद व्यास है, उनको काम उनका ये था कि वेदों का उनको कंपाइलेशन करना था। क्यों कंपाइलेशन करना था, क्योंकि वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी अपने अपने काम छोड़ के अब वो लोग जो है सेल्फिश हो गए, अब वो कोई याद नहीं रखता था, तो वेद नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने सब कलेक्शन किया, कलेक्शन करके उसको कोडिफाई कर दिया 4 वेद के अंदर में, उस काम के लिए आए थे। वेद व्यास किसके अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। शंकराचार्य जी शिव के अवतार, उनका काम क्या था, जब वो शंकराचार्य जी आए तब गीता उपनिषद के इतने भाग हो चुके थे, इतनी व्याख्याएं हो चुकी थी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब बोलते मेरा वाला ठीक है। और शंकराचार्य जी को घूम घूम के उनसे बात करके उनको सबको एकत्रित करके एक जगह करके 4 मठ बैठा दिए, और उनके ऊपर में कमेंट्री लिख दी कि गीता में जो बताया जा रहा है, उपनिषद में जो बताया जा रहा है, सब एक है। ये अंश अवतार हुए हैं। अच्छा, अंश अवतार में भी पूरा पावर उनमें रहता है, मगर दिखाई हमको कम पड़ता है। जैसे कि आप चांद को देखते हो ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, कैसा लगता है, छोटा 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 लगता है, मतलब तो इतना ऐसा चांद है, मैं रियली चांद पूरा है वहां पर, चांद क्या इतना ही होता है क्या उस टाइम में, दिखाई इतना सा पड़ता है मगर चांद पूरा है वहां पर। उसी तरह से जब ये अंश अवतार में आते हैं, पावर उनका पूरा ही आता है, मगर उनका काम इतना सही होता है, बस इतना हमको करके चले जाना है। एक आवेश अवतार होता है, तीसरा आवेश अवतार, जैसे नरसिंह भगवान, भक्त कहता है कि आप इस रूप में आ जाओ, इस खंभे से निकल आओ, भगवान आ जाते हैं आवेश में आके, आवेश अवतार। एक नित्य अवतार होता है, साधु संत, उनके अंदर दिव्यता नजर आती है, साधु संत जो हैं वो नित्य अवतार के अंदर आते हैं। एक अर्चा अवतार होता है, अर्चा अवतार, ये मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं तो उनमें मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, उनकी हम अर्चना करते हैं, वहां जाके हम पूजा देते हैं, वो भी एक अवतार है, उसको हम अर्चा अवतार कहते हैं। और छठा एक होता है, हम गुरु को भी अवतार कहते हैं, उसको मद अनुग्रह अवतार करते हैं, मेरे लिए ये गुरु आए हैं, उसको मद अनुग्रह अवतार कहते हैं। कितने अवतार हुए, पूर्ण अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार, नित्य अवतार, साधु संत, अर्चा अवतार, मंदिर के अंदर मूर्ति, मद अनुग्रह अवतार। मद अनुग्रह, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए मेरे गुरु आए हैं। तो भगवान जैसी जरूरत पड़ती है वैसा अवतार ले लेते हैं, कभी वराह कभी मत्स्य, जैसा जब दरकार हुआ आ गए, कच्छप टॉटर अवतार ले लेते हैं। अच्छा, तो आप कैसे धर्म की पुनः संस्थापना करते हैं? धर्म की संस्थापना आप कैसे करते हैं? तो यहां पर अब आठवां श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा भगवान, आपने ऊपर वाले श्लोक में कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म, वहां ऊपर वाले श्लोक में धर्म धर्म की बात कर रहे हो, यहां पर आपको बोलते हो साधु और दुष्कृता नाम। आपको तो धर्म संस्थापना करनी थी, फिर आप ये साधु और इसको कहां से ले आए दुष्कृता। देखो, धर्म और अधर्म कोई विषय नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसे नहीं है ये धर्म है ऐसा नहीं दिखा सकते हम, ऑब्जेक्ट नहीं है। वैल्यूज को जो है ईमानदारी, मैं ईमानदार हूं तो क्या ईमानदारी हम निकाल के दिखा सकते हैं ये ईमानदारी है? नहीं दिखा सकते हम। तो धर्म की रक्षा करना मतलब क्या है? जिस पात्र के अंदर वो धर्म है उस पात्र को संभालना धर्म है, उसकी रक्षा करनी होगी। तो धर्म किसके पास है? साधु के पास है, साधु की रक्षा करनी होगी। अधर्म कहां है? जो असाधु है, जो दुष्कृत है, उसके पास अधर्म है, तो उसको हटाना होगा। तो क्या करना होगा? उसको खत्म करना होगा। देखो, भगवान अंतर्यामी रूप में सबके अंदर है, सबके अंदर अंतर्यामी रूप में है। जब भगवान अंतर्यामी रूप में रह के उस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कौरव के अंदर भी प्रत्येक के अंदर भगवान है अंतर्यामी, जब नियमन नहीं कर पाते हैं तब बहिर्यामी बनते हैं। क्या समझे? बहिर्यामी मतलब अवतार ले गया, बाहर आ गए, भीतर से हम तुमको ठीक नहीं कर पाए, अब बाहर से ठीक करेंगे तुमको। तुम्हारे भीतर भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हैं, अब तुम कहां जाओगे? देखो, बहिर्यामी अवतार ले लिया। हमारे शास्त्रों में आता है सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य गुण की व्याख्या करते हुए कहते हैं सत्य के ही केवल जय होता है। तो वहां पर शंकराचार्य जी सत्य का मतलब कहते हैं सत्यवान। सत्य की जय मतलब क्या? जो सत्यवान है उसकी जय होगी, जो सत्य का पालन करता है उसकी जय होगी। सत्यवान जयते, मगर हम कहते क्या है? सत्यमेव जयते। अच्छा, तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए साधु की रक्षा करते हैं, और अधर्म को हटाने के लिए जो दुष्कृत हैं असाधु हैं उनको दो तरीकों से काम करते हैं भगवान। पहले, सबसे पहले भगवान उसको जाके समझाएंगे, उसके मन का परिवर्तन करने की चेष्टा करेंगे। जैसे भगवान राम ने रावण से मुलाकात हुई तब बोले कि तुम सीता को वापस कर दो, युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण दुर्योधन को जाके कहे कि तुम उनको 5 गांव दे दो, हमको राज्य नहीं चाहिए, समझाने की पहले चेष्टा करते हैं, और अगर समझ में नहीं आता है तो मार देते हैं, खत्म। सेकंड स्टेप में, अच्छा, धर्म को हम कभी मूर्ति के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। आप चिन्मय मिशन का एक बिल्डिंग बनानी हो तो हम चिन्मय मिशन की बिल्डिंग बना देते हैं, फिर हम लिख देते हैं कि भाई इसको इसकी संस्थापना इस तारीख को ही, इसने आके जो है हमारे गुरु जी ने आके इसको इनॉग्रेट किया, या हमारी मूर्ति प्रतिष्ठा इस तारीख को, ये सब हम लिख सकते हैं। मगर धर्म, धर्म लिख सकते हो? धर्म की संस्थापना कब हुई, कैसे हुई? नहीं, नहीं लिख सकते हम। साधु कौन है? भगवान ने साधु वर्ड यूज किया ना, साधु कौन है? देखो समाज के अंदर साधु को कई बार भिखारी के रूप में पकड़ते हैं, भिखारी देखते हैं उसको, साधु के अंदर दिव्यता नहीं देखते हैं, या साधु को हम किडनैपर के रूप में देखते हैं। जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो मां क्या कहती है, देखो साधु बाबा आया ले जाएगा तुमको, किडनैपर, ऐसा हम कह देते हैं। नहीं तो उसको हम भिखारी समझते हैं, नहीं तो कई बार कहते हैं ये अच्छा साधु है, ये बुरा साधु है। साधु का माने ही अच्छा होता है, साधु मतलब ही अच्छा है, मगर हम अच्छा साधु बुरा साधु ऐसा कहते हैं। उपकारीषु यो साधु साधुत्व तस्य को गुण, अपकारीषु यस्य साधु स साधु इति अभिधीयते। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और आप भी उसका अच्छा करते हो तो आप साधु नहीं हो, वो तो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट हो गया। मैंने आपको हेल्प किया, आपने मेरे को हेल्प किया, वो साधु काम काम नहीं हुआ। साधु वो है कि जो आपको क्रिटिसाइज करे और आप उसको उसका भला सोचो, बहुत कठिन काम है। रियल साधु वो है दूसरे उसकी निंदा करें मगर वो दूसरों के प्रति उनका अच्छा सोचे, वो उसको हम साधु कहेंगे। रामायण के अंदर आता है साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु का चरित कैसा है? कपास की तरह है। कपास मतलब कॉटन, कॉटन कैसा है? ब्राइट है, शुभ्र है, निरस है, उसमें कोई रस नहीं है। कॉटन को निचोड़ोगे तो पानी नहीं निकलेगा, रस नहीं है कुछ भी इसमें। गुणमय है, गुणमय उसका जो है उसके सूता बनता है, सुतली को गुण भी कहते हैं, गुणमय गुणमय है। जो सही दुख परिछिद्र दुराबा, देखो उसको कितने दुख सहने पड़ते हैं। पहले कॉटन को एक दुनिया लेके दुनेगा, उसको पहले पीटता है, फिर उसके बाद में उसको ट्विस्ट करते जाते हैं, उसको मोड़ते ही जाते हैं, एक तरफ में मोड़ते जो सूता बनाते हैं, फिर जुलाह के पास में जाएगा, वो फट 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 कर कपड़ा बनाएगा, फिर एक आदमी उस जाके खरीद के ले आएगा, वहां से दर्जी के पास जाएगा, उसको काटता फिर तो कितने दुख सह रहा है, वो काटेगा उसको, काट पीट करने के बाद फिर उसको सिलाई करेगा। अब सोचो उसको कितना दर्द होता होगा, कितनी बार हो, एक इंजेक्शन लेने में हमारी जान निकल जाती है, और कपड़ा जब सीते हैं तो कितनी बार उसको सुई को उसको उसको घूमना पड़ता है चारों तरफ, करने के बाद में कपड़ा करता क्या है? बोलते हैं आपके छिद्र को ढकता है, आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। किसके लिए दुख सहे? आपके लिए, दूसरे के लिए दुख सहा कपड़े ने। साधु कैसा है? बोले साधु वैसा ही है, दूसरों के दुख को सहायता करता है। जैसे शेर कभी घास नहीं खाता, मर जाएगा तब भी घास नहीं खाएगा, वैसे साधु भी ऐसा ही है, उसका भी चरित्र ऐसा ही है। जितना भी असाधु सताए वो धर्म नहीं छोड़ता, अपना धर्म कभी भी साधु नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा एक साधु था, उसको क्या कहते हैं, बिच्छू, पानी में बह रहा था, वो बार बार उठाए बिच्छू को, वो हाँ रखे, अब बिच्छू उसको डंक मार दे, अब फिर पानी में गिर जाए बिच्छू, फिर उसको उठाए, फिर रखे, फिर वो जंप करके बिच्छू गिर जाए, और जितनी बार उठाए उतनी बार उसको डंक मारे। तो एक आदमी कहता था, क्यों कर रहे हो? बोले उसका काम है डंक मारना, मेरा काम, मैं साधु हूं, मेरा काम है उसको बचाना, मैं बचा रहा हूं। तो साधु अपने काम में लगे रहते हैं। तो बिना सहाय च दुष्कृताम, कैसे अधर्म को रोकेंगे? बस दो तरीके हैं, या तो मन का परिवर्तन कर दे और नहीं तो उसको मार डालो। दो ही तरीके हैं। भगवान पहले सब जगह पहले मन परिवर्तन की चेष्टा करते हैं और फिर नहीं तो खत्म कर देते हैं। देखो हमारे शरीर में अगर कोई अंग में कोई तकलीफ आ जाए पहले क्या करते हैं, पहले प्रेमल जी के पास में जाएंगे, देख जाके बोलेंगे दवाई खा लो, दवाई से काम नहीं किया सुई ले लो, नहीं नहीं पहले उसके बाद सुई लो, इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन नहीं लिया फिर बोलेंगे काट दो। ठीक उसी तरह से भगवान भी करते हैं, पहले समझाते हैं। कहीं पर अगर रायट हो जाए तो क्या होगा, रायट होने से पहले दो तरफ में जो लड़ते हैं उनको बोलते हैं भाई बैठ के एक जगह बैठ के बात कर लो, नहीं बात होती है तो फिर चलो पुलिस को भेज दो, पुलिस से नहीं काम हुआ फिर आर्मी आती है, आर्मी को अगर नहीं घुसने देते हैं तो फिर पैराशूट वाले अवतरण होता है, फिर उस जगह पर अवतरण होता अवतार आता है फिर। ठीक उसी तरह से भगवान भी यहां पर ऐसा ही कुछ करते हैं। भागवत में साधु की परिभाषा आती है, अजात शत्रु शांता तितिक्षस्व कारुणिका साधव। अजात शत्रु किसी के साथ कोई एनिमिटी नहीं है, साधु के साथ में किसी के साथ में कोई किसी की शत्रुता नहीं है, शांता पीसफुल, तितिक्षव टॉलरेंट, कारुणिका कंपैशनेट, ये हैं साधु। दूसरों के प्रति कोमल अपने प्रति कठोर, भगवान राम भी दूसरों के प्रति कोमल अपने प्रति कठोर। गुरुदेव कहते हैं हैंडल अदर्स विथ हार्ट एंड योरसेल्फ विथ हेड। युगे युगे मतलब जब दरकार होगी भगवान आ जाएंगे। तो ये हमारा श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। धर्म का मतलब क्या हुआ? वैल्यूज, वर्चूज, प्रवृत्ति निवृत्ति, अहिंसा परमो धर्म, अपने कर्तव्य करना धर्म है। चार डिफिनेशन बताइए आपको, याद करना आपका काम। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।